अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 3.22 नमे पातास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन मानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम
राम। तो पिछले शुक्रवार को हमने कुछ समझने का प्रयास किया था, कुछ चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी पिछले शुक्रवार में? हमने कॉपीराइट एक्ट के विषय में पिछले समय चर्चा की थी। व्हाई इट इज देयर कॉपीराइट एक्ट? क्या है, क्या है कॉपीराइट एक्ट? मनुष्य किसी की ना किसी की कॉपी करता, किसी का ना किसी का देखा देखी करता है। तो पिछले श्लोक में क्या कहा गया था? पिछले श्लोक में कहा गया था, यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरोजनः। तो कहा गया था बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो क्या करता है? कॉपी करता है। किसकी? श्रेष्ठ जनों की कॉपी करता है। जो श्रेष्ठ जन करते हैं समाज उन्हीं का अनुसरण करता है। परंतु हमने कुछ विपरीत बातें भी कही थी उस समय कि श्रेष्ठ जनों कौन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जनों का अनुसरण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करते भी है, परंतु श्रेष्ठ की व्याख्या क्या है? Who is the best? कौन श्रेष्ठ है बताइए, जिनके मन में भक्ति भाव प्रेम भाव हो। और बहुत व्याख्याएं हैं, भगवान के साथ जो संबंध रखता है, दृढ़ संबंध रखता है और शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है, और हाँ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों को तत्व से समझता है, मटेरियल को भी समझता है, स्पिरिचुअल को तत्व से समझता है। और हाँ भगवान को केंद्र में रखते हुए सब करता है। और सरेंडर, हैंड्स अप, अभी हमने हैंड्स अप किए ना, सरेंडर समर्पण का भाव। चार मंत्र, एक महामंत्र और तीन मंत्र कहे थे उदास, एक महामंत्र और तीन उपमंत्र, चारों महत्व के हैं। तो पहला महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बाकी मंत्र बताइए। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। प्रकृति पूरा क्रिएटिविटी पूरा क्रिएशन इज कैसा है? चंचल है, चलायमान है। चलचित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम, शास्त्र नीति शास्त्र का सूत्र है। चलचित्तम, चित्त चंचल है, मन चंचल है, कभी स्थिर बैठता है नहीं बैठता है। कहीं भी जाइए एकदम शांत जगह पे 100 फुट खोल गुफा खोदिए, उसमें जाके सोचिए मैं मेडिटेशन करूंगा, संसार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मुझे ध्यान करूंगा, केंद्रित मन को स्थिर रखूंगा, बस दूसरा कुछ नहीं करना है, मन को स्थिर रखना है बस, तो भी नहीं रखा जाता। तो चित्त चंचल है, चल चित्तम चलत वित्तम, वित्तम अर्थात धन ऐश्वर्य वो भी चंचल है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास तो कभी किसके पास घूमते रहता है, एक के पास स्थिर नहीं रहता है, है? और चंचलम इदम सर्वम, यह सब कुछ कैसा है? चंचल है। परंतु हम यह बात को भूल ही जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं, 100% भी फॉरगेट। केवल भूलते ही नहीं, हम उसका उल्टा विपर्यास करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जगत जो है चंचल नहीं है, मोस्ट रिलायबल है। जैसा कोई ट्रैवलर है, दिल्ली जाना है, उसको ट्रेन में बैठा है, राजधानी एक्सप्रेस में गाड़ी में बैठा है, बहुत सुंदर गाड़ी लगी है उसको, कंपार्टमेंट इज वेरी नाइस, वेल मेंटेन, क्लीन, स्वच्छ शुद्ध, अच्छा है, तो क्या सोचता है अभी, इतना सुंदर ये है, अभी मैं यही रहता हूं, क्या दिल्ली जाके करूंगा, दिल्ली किस लिए जाना है, यही सब कुछ, यही मेरी दिल्ली है। तो इस प्रकार से जो चंचल है, जिसको हमको, जिसके ऊपर हमको पूरी तरह से जीवन भर निर्भर नहीं रहना है, उसी के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, उसी को सोचते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थात इस जगत का चंचल स्वभाव है, इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए ये पहला दूसरा मंत्र है। पहला हो गया महामंत्र, पहले दूसरा मंत्र है मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, तीसरा मंत्र है ये जगत चंचल है, चौथा मंत्र क्या है, कंट्रोल कंट्रोल पुश बटन, दिस शुड बी ऑलवेज एक्टिव, पुश बटन होना चाहिए ऑलवेज एक्टिव, कुछ भी ऐसे वैसे दिखा, कंट्रोल बटन को पुश करना चाहिए, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो ये चार मंत्र हम पिछले समय इसकी चर्चा हुई थी, और क्या हुआ था, हाँ बहुत महत्वाकांक्षी, श्रेष्ठ व्यक्ति अपने गुणों को भी उपाधक समझता है, यदि मेरे अंदर कुछ सद्गुण है तो उसको भी मैं या आप बाधक समझते हैं, वो भक्तों के लक्षण। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या सोचता है, उसके अंदर ये सद्गुण भी है, उदाहरणार्थ ज्ञान, बहुत ज्ञान है, तो वो उस ज्ञान को व्यक्ति क्या समझता है, बाधक समझता है, क्यों, क्योंकि अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार के कारण व्यक्ति के अंदर समर्पण का भाव, समर्पण छोड़िए, समर्पण को जान लीजिए, प्रेम भाव उत्पन्न नहीं है। आज संसार में यदि किस बात की सख्त जरूरत है, डेस्परेट नीड, एकदम सख्त जरूरत है, वो किस बात की है, एवरीबॉडी इज हंग्री, सबको भूख है प्रेम की, उस प्रेम की कमी है, और वो कमी केवल कौन कर सकते हैं, पूरी श्रेष्ठ पुरुष। और श्रेष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या होता है, प्रोफिलैक्टिक इफेक्ट कहते हैं उसको, मतलब संपर्क में आते से उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑटो ट्रांसफर। सो उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं उनकी कृपा से, और हाँ इसे महत्व की बात है, वो क्या करता है, नित्य सृष्टि का हित, संपूर्ण सजीव सृष्टि, निर्जीव सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का हित चाहता है, वो क्या करता है, काया वाचा और मन, समय विशेषकर काया वाचा और काल, इन तीनों का सदुपयोग कैसा करना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। अपने शरीर का द बेस्ट यूज ऑफ आवर बॉडी, क्या बेस्ट यूज हो सकता है हमारे शरीर का, दी बेस्ट, वो श्रेष्ठ पुरुष जानता है। कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं जिससे पूरे समाज का, न केवल मेरा, न केवल मेरे परिवार का, न केवल मेरे समाज का, बल्कि संपूर्ण संसार का जिस शब्दों से लाभ होता है उस शब्दों को ही वो उपयोग में लाता है, अर्थात वो वाचा का सदुपयोग करता है। और क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण तीसरी बात, समय, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग कैसे करता है, अलर्ट रहता है समय के प्रति, देखता है समय कैसे जा रहा है, वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है या समय इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यू हैव टू सी एवरी डे एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण देखना चाहिए कि मेरा प्रत्येक क्षण इन्वेस्ट हुआ कि वेस्ट हुआ, है कि नहीं, जोर से शुरू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और श्रेष्ठ व्यक्ति का एक बहुत महत्व का स्वभाव होता है, उसका क्या स्वभाव होता है? देने का भाव, देने का भाव, लेने का भाव नहीं होता है। क्या होता है?
देने का भाव होता है।
देने के भाव, देने का भाव उद्धार करने वाला होता है और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। देने के भाव से उद्धार होता है, लेने के भाव से पतन होता है। अब आप सोचिए लेन देन, जब व्यक्ति किसी को देता है, मान लो आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आपको कैसे लगता है? कैसे लगता है? अच्छा लगता है? और किसी से कुछ ले रहे हो कैसे लगता है? स्ट्रेसफुल लगता है। सो यदि सब कोई देने लगे तो सभी संसार के सभी लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। परंतु प्रश्न यह है कि किसी को भी देना नहीं, कुछ भी नहीं देना है, सभी को सब कुछ लेना है, सभी को सब कुछ प्राप्त करना है। यह भाव से प्राप्त करना है कि समग्र संसार की निर्मिति केवल मेरे लिए हुई है, दूसरे के लिए नहीं हुई। नहीं, देने से ही संसार की यह दशा हुई, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि सारा संसार मेरे लिए है, आप भी ये सोचते हैं कि सारा संसार आपके लिए है, ये भी सोच, सब कोई हम क्या सोचते हैं? सब मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। जब मेरे लिए, मेरे लिए सब सोचते हैं तो बीच में क्या हो जाती है? स्पर्धा हो जाती है। किसकी स्पर्धा हो जाती है? छीनने की स्पर्धा हो जाती है। आपके पास है, मेरे पास नहीं है, मुझे आपसे छीनना है, छीनने की स्पर्धा शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि संसार में आज चोरी, बदमाशी, झूठापन, सारे प्रकार के अनर्थ, अत्याचार, पाप, बुराइयां, असत्य, ये सब बढ़ने का कारण भी है। यह हम सब कुछ पिछले समय देखी है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया कैसे होती है? शास्त्रोक्त रहती है। और आगे बताइए, यत् प्रमाणम स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, अर्थात वह जो कुछ भी प्रमाणित करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अब किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका अनुसरण करना नहीं चाहिए, इसकी व्याख्या हुई थी। श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करना चाहिए, यह हमने कहा था। और हम किसका अनुसरण करते हैं, समाज में, संसार में लोग किसका अनुसरण करते हैं, इसकी भी चर्चा होगी। हमारे हृदय में जो भाव होता है, हमारे हृदय में जो लोलुपता रहती है, उसके अनुसार जो व्यक्ति हमको ठीक लगते हैं उनका हम अनुसरण करते हैं। समझो मानो हमारे हृदय में धन प्राप्ति की लालसा है, मुझे धन प्राप्त करना है, धन चाहिए, तो मैं किसका अनुसरण करूंगा? कोई धनी व्यक्ति होगा। उदाहरण हमने बताया था बहुत सारे, मान लो अमिताभ बच्चन, जिस वर्ष से हम जब से समझ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, जिस वर्ष से क्या प्रभा देवी में गणपति दर्शन के लिए पैदल चलने लगे, हर साल चतुर्थी के दिन वो पैदल जाते हैं उनके घर से गणेश मंदिर, कहां पे? सिद्धिविनायक। जब से वो पैदल जाना शुरू किए तब से वसई विरार पालघर से लोग पैदल जाना शुरू किए सिद्धिविनायक का दर्शन करने के लिए। उसके पहले अनेकों संत महात्मा हो गए, अनेकों प्रकार के प्रवचन हुए, बहुत गणेश महात्म्य पढ़ा गया, लेकिन कोई पैदल सिद्धिविनायक जी के पास, भगवान के पास नहीं गया। परंतु जब अमिताभ जी गए तो अनुसरण किए। क्यों क्यों इन लोगों ने उनका अनुसरण किया? क्योंकि हृदय में जो भाव है, हृदय में भाव है कि मुझे अमिताभ जैसा बनना है, धनी बनना है, प्रसिद्ध बनना है, कीर्तिमान बनना है। तो हृदय में जिस प्रकार की लोलुपता होगी, जिस प्रकार की आसक्ति होगी, उस व्यक्ति का हम अनुसरण करते हैं, न कि शास्त्र के अनुसार जो अपने जीवन का या अपना जीवन यापन करता है उसका अनुसरण हम नहीं करते, क्योंकि वो हमको जचता ही नहीं। हम कहते हैं नियमों का पालन करो, शास्त्र कहता है चार नियमों का पालन करो, शास्त्र कहता है अपने जीवन को रेगुलेट करो, नियमित करो, नियमित करो। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, कहां नियमित करेंगे, समय किसके पास है जीवन को नियमित करने के? जीवन को नियमित करने के लिए समय नहीं है कि नहीं? तो डॉक्टर ने बोला तो फिर तो किसका अनुसरण करते हैं? भगवान स्वयं इस श्लोक में कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोगे। श्रेष्ठ जनों का अनुसरण करना चाहिए, और श्रेष्ठ की व्याख्या भी की है भगवान ने, और हमने ये भी चर्चा की थी कि यह भगवान ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। भगवद गीता का यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इसको स्पष्टीकरण किया है, भगवान स्वयं भक्त बन के वो सब आचरण करके दिखाए। सारे शास्त्रों का प्रैक्टिकल करके दिखाए भगवान ने, स्वयं एक्सपेरिमेंट किया इस विषय। और हम किसका अनुसरण करते हैं ये सोचना चाहिए, अनुसरण श्रेष्ठ व्यक्ति का करना चाहिए। ये पिछले श्लोक में भगवान का विशेषकर उपदेश था, और ये हमने कहा था दिस इज अ साइकोलॉजिकल तत्व, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल, कि वी नॉर्मली फॉलो समबडी, हम किसी का ना किसी का अनुसरण करते हैं। आज का श्लोक श्लोक संख्या 22, पिछला जो श्लोक है 3.21, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, यह श्लोक आप सब अच्छी तरह से याद करो, अच्छी तरह से याद करो, और कभी भी नींद में से भी उठे तो यह श्लोक बोलना चाहिए 3.21, ताकि हमको नित्य स्मरण में रहेगा कि हमको श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करना है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरोगुण सयत् प्रमाणं कृते लोकस् लोकस्तद् अनुवर्तते। श्लोक एकदम कभी भी पूछे तो स्मरण में रहना चाहिए, इमरजेंसी में स्मरण होना चाहिए। तो अभी हम 3.22 की चर्चा कर रहे हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्य वर्तम एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। नमे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है भगवान के लिए कोई कर्तव्य? तीनों गुणों से परे, ईश्वर परम पुरुष, इज एब्सोल्यूट, आदि पुरुष, वेरी गुड, दिस इज द, और सभी उत्तर एकदम सही है, पर ये एकदम, ये उत्तर एकदम टू द पॉइंट है। भगवान काम क्यों नहीं करते? प्रश्न सीधा सीधा ये है, सिंपल साधा प्रश्न में है कि भगवान कुछ काम क्यों नहीं किया। भगवान क्या कह रहे हैं आखिरी की आखिरी के, वर्त एवच कर्मणि, मुझे कर्म करने की, फिर भी मैं कर्म करता हूं। पहले क्या कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्य, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं। पहला शब्द नमे पार्थास्ति कर्मणि, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो क्यों नहीं? प्रभु जी कहे कि मुझे कुछ फल की इच्छा। भगवान को क्या चाहिए बताओ? यदि किसी के पास किसी वस्तु विषय या व्यक्ति का अभाव हो तो वो कुछ पाने की इच्छा रखे, मेरा पास अभाव है मुझे चाहिए। भगवान के पास किसका अभाव है? कोई अभाव नहीं, भगवान के पास भरपूर है सब कुछ। भगवान षड् ऐश्वर्य परिपूर्णम, छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, किसी चीज का अभाव ही नहीं है। और जब अभाव ही नहीं है तो कुछ कर्म करने की आवश्यकता है? कर्म करने की आवश्यकता है? किसी चीज का अभाव ही नहीं है तो कर्म क्यों करेंगे? हम कर्म इसलिए करते कि हमको अभाव का अनुभव होता है, है कि नहीं? अभाव का नित्य अनुभव है कि नहीं? कितना भी होने दो, अभाव है। कितना भी व्यक्ति श्रेष्ठ होने दीजिए, कितना भी ऐश्वर्यशाली, कितना भी बुद्धिमान, कितना भी ज्ञानी होने दीजिए, उसको फिर भी अभाव का अनुभव होता है। परंतु भगवान केवल ऐसे हैं जिनके पास अभाव का अनुभव होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नमे पार्थासि कर्तव्यम, मुझे कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और यहां शब्द है पार्थ, नमे पार्थ, प्रत्येक श्लोक में भगवान ने अर्जुन के भिन्न भिन्न नाम कहे हैं और अर्जुन ने भी श्री भगवान के लिए भिन्न भिन्न नामों का उच्चारण किया है। प्रत्येक समय वह नाम उनकी भावनाओं का वर्णन करता है, भक्त और भगवान। तो पार्थ यहां कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, मुझे कर्तव्य कर्म कर, मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं। और तुम पार्थ, तुम कुरु वंश, इतने बड़े श्रेष्ठ वंश के क्षत्रिय हो, और मैं भी यदुवंशी हूं, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हूं, और तुम मेरे भाई हो रिश्ते में, मैं भी श्रेष्ठ हूं, तुम भी श्रेष्ठ हो, मैं भी बड़े कुल से आता हूं, तुम भी बहुत श्रेष्ठ कुल से आते हो, और मुझे कर्म की आवश्यकता भी नहीं है, जैसे तुमको नहीं है, तुम सोच रहे हो, मुझे भी नहीं है, परंतु फिर भी मैं कर्म करता हूं, और पार्थ तुम तो मेरे भाई हो, पार्थ पुथा पुत्र, पुथा मेरी बुआ है, जब मैं ये करता हूं, बड़ा भाई यदि ये करता है तो छोटे भाई को करने में क्या तकलीफ। भगवान यहां पे संबंध बता रहे हैं, अर्जुन के साथ भगवान का क्या संबंध है, उस संबंध को भी उपयोग में ला रहे हैं। देखिए, भगवान ने इसके पहले के श्लोक में कहा था, 3.20 में शायद, जनक महाराज का उदाहरण दिया, महाराज देखो देखो अर्जुन देखो वैसे बनो, वो महाराज जनक जैसे है ना वैसे बनो। फिर थोड़ी सी बातचीत हुई, अब इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, स्वयं का उदाहरण, क्या कर रहे हैं, स्वयं का उदाहरण। मान लो आप हमारे यहां पे आए और अभी ठंडा मौसम में बारिश वगैरह चल रही है, बैठे हम लोग चाय तो पीते नहीं और आपके लिए हमने उकाला बनाया और आपको कहा लीजिए लीजिए प्रभु जी लीजिए, आप क्या बोलेंगे, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। फिर हम क्या बोलेंगे, ठीक बात है मैं भी एक कप लेता हूं आप भी लीजिए। फिर आप बोलेंगे ठीक है आप लेंगे तो मैं भी थोड़ा ले लूंगा है ना, ये दिस इज अनदर साइकोलॉजी। इसी प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, देखो अर्जुन तुम युद्ध करना नहीं, कोई बात नहीं, कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते हैं मत करो कोई बात नहीं, पर देखो मैं भी करता हूं, मैं करता हूं तुम थोड़ा तुम भी करो ना साथ में जब मैं कर्तव्य कर्म करता हूं तो why you don't do your obligatory duties, तुम क्यों नहीं करते, चलो हम करेंगे, मैं भी करता हूं जबकि मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम बोल रहे हो तुम्हें आवश्यकता नहीं, मान लिया, परंतु फिर भी मैं करता हूं, उसी प्रकार से मैं करता हूं, इसलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। साइकोलॉजी तो व्यक्ति नहीं नहीं बोलता है, बोलता है नहीं, ठीक है साथ में साथ में कर, नहीं कोई नहीं बोलता है। इसी प्रकार से भगवान इस जगह पे अर्जुन को पुथा पुत्र, पुथा हे पार्थ कहके अपने दृढ़ संबंध, अपने जो संबंध है उसकी दृढ़ता बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और वास्तव में भगवान कैसे हैं, भगवान आत्मारामी व्यक्ति, आत्माराम, भगवान स्वयं भगवान है। हमने 17वें श्लोक में क्या देखा था, तस्यम कार्य न विद्यते, सॉरी तस्य कार्यम न विद्यते, उसमें कहा गया था 17वें श्लोक में कि कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जो है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है तो कृष्ण को कार्य करने की आवश्यकता होगी क्या? कृष्ण भावना भावित कोई नहीं है तो कृष्ण को क्या होगी? क्या कृष्ण को आसक्ति होगी किसी चीज से? जरूर अभाव नहीं है पर आसक्ति होगी? तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके प्रति कृष्ण को आसक्ति हो। तीनों लोगों कृष्ण स्वर्ग भी नहीं चाहते। सुधर्मा जो स्वर्ग के लिए सब झगड़े होते हैं, स्वर्ग का अर्थ क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, द बेस्ट एंजॉयमेंट, सबसे अच्छा। यदि हमको भोग यदि कहीं पे मिलता है तो कहां पे मिलता है? इसलिए सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग सुख, स्वर्ग आनंद, सब स्वर्ग की उपमा देते हैं। प्रत्येक समय स्वर्ग की उपमा देते हैं, स्वर्ग चाहते हैं। भगवान वह भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग साक्षात भगवान के पास आ गया। जब भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया तो वो इंद्र ने क्या किया? स्वयं उनकी अपनी राज्यसभा को भगवान की सेवा में भेज दिया। सुधर्मा जाओ, भगवान इंद्र, भगवान द्वारकापुरी का निर्माण कर रहे हैं, अपनी सारी सरसर स्वर्ग ही मुझसे भेज। तो भगवान को क्या आवश्यकता है स्वर्ग की? स्वर्ग स्वयं आ जाता है भगवान को। ये भगवान की भगवत्ता है। परंतु भगवान नहीं चाहते। हमने क्या करना चाहिए? हमने क्या चाहना चाहिए? हमारी क्या चाहत होनी चाहिए? श्री कृष्ण की प्राप्ति ही समस्त कार्यों का परम फल है। ये हमारे लिए, हमने कैसे रहना चाहिए? भगवान की बात होगी, भगवान हमारे लिए क्या उपदेश देते हैं? भगवान कहते हैं कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या सबसे परम फल है? सबसे परम फल, सर्वोत्तम फल क्या है? मानो जो कुछ भी क्रिएशन, सारा जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो तो जिसने किसने निर्माण किया है, श्री भगवान, वही हमारे साथ हो जाएगी। तो हमारा कर्तव्य यह है, परम कर्तव्य, इस परम फल को प्राप्त करना। परम फल क्या है? भगवान की प्राप्ति, श्री कृष्ण को प्राप्त करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस मनुष्य जीवन में। श्रीमद् भागवतम में नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं, हे प्रहलाद, मांगो, तुमको क्या चाहिए तुम मांगो, मांगो जो सब, तीनों लोग, 14 लोग, सब चाहिए, सब जितने लोग हैं सब दे देते, क्या चाहिए मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? हे प्रभु, जिन फलों को आप मांगने के लिए कह रहे हो वो फल आप दो भी, दे भी दोगे। जो भी फल आप मुझे मांगने को कह रहे हो वो फल आप मुझे प्रदान भी करोगे, मुझे दे भी दोगे आप। परंतु आप ही की जो शक्ति है, समय, समय किसकी शक्ति? आप ही की शक्ति है भगवान। ये समय आप ही की शक्ति है। जो फल आप हमें दोगे ये समय उसको नष्ट कर देगा। भगवान आके हमारे समक्ष प्रकट हो गए और हमने मांगा क्या चाहिए बोलो, और हमने बहुत कुछ मांग लिया। 14 लोग मांग लिए। परंतु समय के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। तो प्रहलाद महाराज देखिए कितने विद्वान थे, कितने शुद्ध भक्त थे। 5-7 वर्ष का हूं, तो क्या सोचे वो कि आप जिन चीजों को मांगने के लिए, जिन फलों को आप मुझे दे रहे हो, जिन वस्तुओं को, सुख को, विषय को प्राप्त करने के लिए मुझे आप कह रहे हो, वो सारी चीजें, वो सारे वस्तु आप ही की जो शक्ति है समय, वो समय उसको, उन सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। तो फिर ऐसे फल को मांगने के लिए आप मुझे क्यों कह रहे हो? मुझे तो आप ही चाहिए। कौन चाहिए? आप स्वयं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता। समय का प्रभाव आपके ऊपर होता है? भगवान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए भगवान, मुझे तो आप ही चाहिए। तो कर्तव्य कर्म ऐसे होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म ऐसे होना चाहिए कि जिसमें हमको भगवान की प्राप्ति, जिसके ऊपर समय का प्रभाव।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
भगवान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भगवान के ऊपर समय का इसलिए प्रभाव नहीं हो सकता है क्योंकि भगवान तीनों गुणों के परे है, भगवान सारे शक्तियों के स्रोत है, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी। तीन लोग कौन से हैं? एक स्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक समझिए इसको, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर के लोगों में ब्रह्मलोक, फिर पृथ्वी भूलोक और फिर पाताल। तो सबसे ऊपर का जो लोक है ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक के प्रेसिडेंट कौन है, मुख्य कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी इतने बड़े विद्वान ब्रह्म है, ब्राह्मण है, इतने बुद्धिमान है कि सारे समग्र सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है। भगवान वृंदावन में लीला कर रहे थे, वृंदावन लीला भगवान की अति सुंदर लीला है, सर्वश्रेष्ठ सर्व लीलाओं से श्रेष्ठ लीला व्रज लीला है भगवान। क्यों व्रज लीला श्रेष्ठ मानी जाती है, क्या कारण है? केवल माधुरी है और वहां भगवान फ्रेंडशिप भी करते हैं, सेवा भी स्वीकार करते हैं, सारे संबंध भगवान आप वो ब्रज लीला में। यदि आपके मन में कुछ भाव आ गया कि भगवान की सेवा करूं तो आप भी जा सकते हैं, एंट्री है भक्त के माध्यम से। वहां जितने भी भगवान के भक्त है भगवान के साथ पांच प्रकार के संबंध बनाए हुए हैं और सारे संबंध परिपूर्ण है वहां पे। सबसे ज्यादा मात्रा में माधुर्य है परंतु बाकी सारे संबंध वहां पे है। और यदि हम चाहे कि किसी वहां के किसी भक्त के माध्यम से भगवान की डायरेक्ट सेवा करें तो मिल सकती है। यह व्रज भूमि की विशेषता है, साधे सिंपलिसिटी, सरलता है वहां, एकदम सरल भाव में भगवान की भक्ति होती है। भगवान के साथ अपने व्यवहारिक जैसे संबंध बनाए हैं। भगवान जब वन में जाते थे गायों को लेके गोचारण लीला, पूरा दिन भर गायों को चराते चराते थक जाते, फिर दोपहर का समय होता तो भोजन के लिए कुछ जगह ढूंढते कहां बैठा जाए कहां बैठा जाए, तो कोई बड़ा विशाल वृक्ष मिलता जहां छाव हो, बाजू में थोड़ा जल हो, सरोवर हो या जमुना जी हो, ऐसा कोई ठिकान हो, ऐसी स्थली को ढूंढ लेते और फिर गायों को भी आराम करने की थोड़ी सुविधा हो ऐसी स्थली ढूंढ लेते और वहां पे थोड़ा देर बैठ के भोजन करते और भोजन के पश्चात थोड़ा आराम भी करते। तो जब वो इस गोचारण लीला के लिए प्रस्थान करते थे साथ में उनके हजारों लाखों गायिया होती, और गाया भगवान से इतना प्रेम करती थी, भगवान के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कृष्ण के साथ में, भगवान कृष्ण के पैर में घुंघरू लगे हुए रहते, जैसे सुबह सुबह माता यशोदा और नंद बाबा सारे गायों को छोड़ते कृष्ण बाहर खड़े रहते, चलो एक एक गायों को बुला, कृष्ण बाहर खड़े रहते और सारी गाया आती कृष्ण के पीछे, सारी गाया खड़ी रहती, कोई एक गाय आगे निकला और फिर कृष्ण बांसुरी वादन बांसुरी बजाते और प्रस्थान करते थे। बांसुरी के माध्यम से प्रत्येक गाय का नाम लेते थे और जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई उस गाय का नाम लिया श्यामली धावली, तो वही गाय कान ऊपर करती थी। अरे ऐसी सारी लाखों गायियां एकत्रित हो जाती और भगवान फिर सोचे देखिए सब आ गए, भगवान को सबका इंट्रोडक्शन था, सबका बिल्कुल अच्छा परिचय था भगवान को, गायों का बछड़ों का सभी तब देखते थे सभी गाइया आ गई। जब कृष्ण चलना शुरू करते थे तब गाइया उनके पीछे चलना शुरू करती। ये नहीं कि चले अपने छोड़ दिया कि भागे, नहीं, कृष्ण चले उनके पीछे चलते, कृष्ण के पैर में होते घुंघरू छन 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 छन, कभी दौड़ते थे कृष्ण, बहुत दौड़ते थे, तो उनके पीछे पूरी 100,000 गाइया दौड़ती थी। और दौड़ते दौड़ते अचानक खड़ी हो गए कृष्ण, कि गाय गाय भी जैसे अचानक ब्रेक लगाते हैं ना, वैसे ब्रेक लगाए रोबोटिक एकदम खड़े हो जाते थे, उसे एक कदम आगे नहीं बढ़ते। ऐसा कृष्ण का प्रेम गायों के साथ, और फिर चलने लगे धीरे धीरे, फिर गायें चलने लगी। इस प्रकार से कृष्ण का गायों के साथ प्रेम था। ऐसे ही गोप सखा, उनके साथ बहुत सारे सखागण हुआ करते थे, उनके मित्र फ्रेंड्स, उन सारे सखाओं के साथ दिन भर गोचारण करते, पूरे जंगल में घूम 84 कोस, कितना बड़ा वन है देखो, दिन भर घूमते रहते गाय, खूब आनंद से विहार करते, बिहारी लाल की जय, इसलिए कहते वन बिहारी लाल की जय, वन में विहार करने वाले। तो ये मंदिर कुसुम सरोवर के बाजू में ही है, श्री राधा वन बिहारी जी मंदिर है। तो वन बिहारी, वन में विहार करने वाले अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ, दोपहर के समय लंच टाइम होता था, लंच ब्रेक भोजन का समय, तो इस प्रकार से पेड़ के नीचे सब लोग बैठे। अब कृष्ण देखते थे सब अपना अपना टिफिन खोलेंगे तो देखेंगे किसके टिफिन में क्या क्या है, जरा किसी के टिफिन में अच्छा कुछ संदेश मालपुआ कुछ ऐसा कुछ दिखा, उसके बाजू में जाके बैठ जाते कृष्ण। और उस खाने के मामले में उनका एक मित्र था मधुमंगल, वो कृष्ण से भी होशियार था खाने के लिए, वो बिल्कुल देखता था कि किसके थाली का मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने को मिले। तो इस प्रकार से जब बैठ जाते हैं थाली वाली तो कुछ नहीं होती थी, सब शेयरिंग एटीट्यूड। देखिए भगवान क्या सिखाते इस लीला में, बच्चों में क्या होना चाहिए, शेयरिंग एटीट्यूड, एकदम बाल अवस्था से बच्चा दो तीन साल का ही होता है तब से क्या होना चाहिए, शेयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अभी बच्चे के में क्या एटीट्यूड होता है, दिस इज माइन, ये मेरा है, 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 वो नेचुरली आ जाते। माता पिता सिखाते नहीं है, सिखाते ऐसे नहीं हम बोल रहे, परंतु ये कलयुग का प्रभाव देखिए इतना है कि मैं और मेरा का भाव जन्मता ही आ जाता है, नो शेयरिंग एटीट्यूड, जन्मता ही वो अवगुण आ जाता है। परंतु भगवान अपनी बाल्यावस्था से ये लीला के माध्यम से सिखा। फिर बैठ जाते थे अपना टिफिन खोल लेते, कैसे खाएंगे, कोई थाली नहीं कुछ नहीं, खोल देते हाथ में रोटी उसके ऊपर सब्जी, कोई समोसा वगैरह हो तो बीच में ऐसा लगा देते, छोटा पकौड़ा हो तो ऐसे अचार इस उंगली में, बीच में रोटी उसमें सब्जी, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में कोई खाता है, लेकिन भगवान लेफ्ट हैंड में लेके खाते और राइट हैंड से लेते, कोई दूसरे के हाथ में कुछ अच्छा दिखा तुरंत उसका खा लेते और बीच में ऐसा लगा कि नहीं कुछ खास डिश नहीं है, तुरंत उठ के दूसरी जगह चले जाते थे, उसके हाथ में क्या है वो खा लेते, झूठा। ऐसी भगवान लीला। एक दिन ब्रह्मदेव भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने इस प्रकार की लीला देखी, भगवान कृष्ण का बहुत नाम सुने थे, क्या है क्या, जरा मैं भी देख लू ये क्या मायावी बालक है, मैं जरा समझना चाहता हूं। इस भाव से वो वहां पे देखते थे, वृंदावन ब्रजमंडल में आए, उन्होंने देखा ऊपर से अपने विमान में हंस पे बैठे बैठे, ये मायावी, ये भगवान नहीं हो सकता, कैसे भगवान होगा, झूठा खाता है, भगवान झूठा तो खाते हैं कभी, वो भी लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में लेके खाते, लेफ्ट हैंड में, भगवान लेफ्ट हैंड में खाएंगे, इतना सिंपल रूल पता नहीं है कैसे भगवान हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, साधा नियम है। क्या कहते हैं, इन रूल्स देर इज नो लव एंड इन लव देर इज नो रूल, इन लव देर इज नो रूल, इन रूल देर इज नो लव, ऐसा नॉट ऑलवेज, पर इस प्रकार से जब वो ब्रह्मदेव ने देखा, वो तो ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मदेव ने इस प्रकार से नियमों को देखा, ये ब्राह्मण नहीं, ये भगवान नहीं है, इनकी तो मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी, देखते हैं ये क्या करते हैं। और उन्होंने क्या किया, जितने बछड़े थे वो सारे बछड़ों को और जितने कृष्ण के मित्र थे सखा, उन सभी को ब्रह्मलोक को उठा के लेके गए, चुरा के लेके गए, उठा के लेके चुरा के लेके, देखने के लिए क्या भगवान क्या करते हैं। वास्तव में भगवान है तो पता चल जाए, परंतु क्या हुआ, कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया, ब्रह्मदेव हाँ भूल गए हो, मेरी प्रार्थना किए थे कि कैसा ये ब्रह्मांड का निर्माण करना है, मैं कौन हूं, जैसा ही जन्म हुआ मेरी प्रार्थना की, तब किए और मुझे पूछे प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कहां जाना है, मुझे कैसे जाना है, भूल गए हो मुझे। ठीक बात है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भ्रम दूर कर देते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तृत विस्तार किया और जितने बछड़े वो लेके गए बछड़ों का रूप ले लिए, और जितने सखा गोप सखा वो लेके गए थे ब्रह्मदेव, उतने गोप सखा का रूप वो स्वयं ले लिए। एक वर्ष के पश्चात जब ब्रह्मदेव सोचे अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं, देखने के लिए आए तो देखते हैं ये तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बल्कि सब एकदम आनंद से गाइया भी बहुत आनंद का अनुभव कर रही है, बल्कि ज्यादा आनंद का अनुभव कर रही है, बल्कि ये जो बछड़े हैं इन बछड़ों के सानिध्य में गौ माता है तो ज्यादा आनंद का अनुभव कर रही है, और जो जिनके बच्चे गोप सखा जो गए थे उनकी माता है तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, एक वर्ष से घर में इतना आनंद कैसे, प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक विषय में प्रत्येक व्यक्ति में एकदम आनंद और क्रोध भरा हुआ लग रहा है, उत्साह लग रहा है, ये कैसे, उनको भी नहीं समझ में आया। ब्रह्मदेव जब यह देखे तो वो एकदम मूर्छित से हो गए, ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये तो वही भगवान है जिनको मैंने प्रश्न पूछे थे, ये तो मेरे भगवान है, मैंने कहां गलती कर दी। तो ब्रह्मदेव को भगवान की प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा, जो ब्रह्म लोक के सबसे प्रथम मुख्य है वह जब भगवान के लिए आते हैं, अर्थात ब्रह्म लोक भगवान के लिए आता है, भगवान को ब्रह्म लोक की आवश्यकता है। इस प्रकार से भगवान है, भगवान को तीनों लोकों में कृष्ण को कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म लोक या सत्य लोक या चंद्र लोक इंद्र लोक या ज्योति लोक है उसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण को कुछ कर्म करना पड़े, नहीं, वो सब आ जाते हैं, जहां कृष्ण आते हैं वहां ये सब अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की प्राप्ति होना चाहिए, न कि ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वो सब नहीं चाहिए। भौतिक सृष्टि का मुख्य सिद्धांत क्या है, भौतिक सृष्टि का मुख्य सिद्धांत है जो भगवान से विमुख जीव है, जो भगवान से विमुख जीव है उनको मृत्यु कष्ट और अज्ञान देना, भौतिक सृष्टि का तत्व है सिद्धांत है। और आध्यात्मिक सृष्टि का क्या सिद्धांत है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। देखिए पहले जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्री कृष्ण के प्रति विमुख होते हैं, और ये जो होते हैं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं। जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित जीव है उनको शाश्वत जीवन देना आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत है, कि जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं उनको शाश्वत रूपी जीवन देना, उनको सुख देना, उनके जीवन में आनंद प्रदान करना, उनके जीवन के कष्ट दूर करना तथा ज्ञान प्राप्ति की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे। ये किसका सिद्धांत है? आध्यात्मिक जगत का। दोनों जगत है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत क्या है कि जो श्री कृष्ण के प्रति या जो भगवान के प्रति समर्पित है उनको सब कुछ उपलब्ध करा देना, सब कुछ, एवरीथिंग। ये आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। भौतिक जगत का क्या है? जो कृष्ण के से विमुख है, विमुख है, कृष्ण की ओर नहीं जाते जल्दी, बहुत बोलने के पश्चात भी नहीं जाते, भगवान नाम का कुछ शब्द भी उनको पता नहीं होता है तो उनके लिए क्या प्रदान करना? तो भौतिक संसार उनके लिए क्या प्रदान करता है? अज्ञान। वो सारी फैसिलिटी उनको देते हैं जिससे अज्ञान बहुत बढ़ जाता है। अज्ञान बढ़ाने के जितने भी सोर्सेस होंगे उनको सब कुछ मिल जाते हैं, कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए हमको आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ही क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण दोनों जगत के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण दोनों जगत के स्वामी, सारे जगत, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। इसलिए कृष्ण से विमुख होना लाभदायक है क्या? कृष्ण की ओर बढ़ना लाभदायक है क्या? कैसे? सबसे पहली बात तो सुख प्राप्त होता है। किसको सुख नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना, सिंपल है फिर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब आध्यात्मिक सिद्धांत ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख और आनंद और ज्ञान प्राप्त होना, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत है। परंतु हम तो भौतिक जगत में आए, भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का अनुभव कैसे करेंगे? हमने तो ये बातें सुनी है ना, स्वर्ग और वैकुंठ और गोलोक है तो सुनी, पर हम तो यहां पे हैं। वी आर हियर ओनली, वी डोंट हैव टिकट्स, टिकट भी नहीं है, कोई बुकिंग भी नहीं है, एडवांस बुकिंग भी नहीं है, रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान इसलिए स्वयं इस धरती पे आते हैं भौतिक जगत, कि जो स्पिरिचुअल फैसिलिटीज है जिसके कारण हमको आनंद और ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो आनंद और ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, हमको प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं यहां पे आते हैं। वो जानते हैं कि भौतिक संसार में जीव बसा हुआ है तो बड़ा दुखी होगा, परंतु इसकी इच्छा है, क्या इच्छा है? आध्यात्मिक अनुभव करने की, अर्थात भक्त की प्रवृत्ति है। तो भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान आ जाते हैं, हमारा त्राण दूर कर देते हैं, अर्थात हमारे दुख को दूर करते हैं, हमको सुख प्रदान करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके कारण हमको आध्यात्मिक अनुभूति होती है। भगवान श्री चैतन्य नवद्वीप धाम में आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का आसान तरीका सबको दे रहे, कुछ करना नहीं, कुछ भी करना नहीं, बैठे बैठे जहां बैठे कहीं पे भी बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, वहां बैठे बैठे कृष्ण का नाम लेना है, कितना आसान तरीका है। सो ये भगवान देते हैं। भगवान की विशेषता है कि भगवान का, भगवान भक्तवत्सल है, इसलिए वो आते नहीं तो भगवान को आने की क्या जरूरत? मन में ये प्रश्न आना चाहिए ना, भगवान को क्या जरूरत है यहां आने की? वाय भगवान इज कमिंग हियर, क्यों भगवान आते, क्यों करते धर्म की स्थापना? सबसे पहला है परित्राणाय साधुना, क्यों परित्राणाय साधुनाम, क्यों क्यों? भगवान दयालु है, वो जानते कि यह लोग वास्तव में क्या है? साधु। साधु अर्थात इनके अंदर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का इच्छा है, बस इच्छा चाहिए भगवान को पाकर। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, भगवान सब कदम आ रहे हो, क्या कहते हैं, देर इज अ विल, देर इज अ विल, विल होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, विल पावर, विल को पावर इसीलिए कहा गया, अदरवाइज विल हैज नो पावर, विल को इसलिए पावर है कि विल करने से वो भगवान स्वयं हमारी ओर दौड़ते दौड़ते आ जाते, जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ विल, दैट्स व्हाई इट इज विल पावर, अदरवाइज हमारी विल जो होती है, हमारी इच्छा जो होती है वो बड़ी भयानक होती है, जघन्य पाप करवाती है, वो कहां की पावर होगी, वो पावर है, पावर तो उसको कहते हैं जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा लाभ हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, तो इसलिए विल वही रखिए, उसी को विल पावर कहते हैं जिसमें भगवान को अट्रैक्ट करने की विल हो, भगवान को आकर्षित, हमारे और आकर्षित करने की जिसमें विल है उसी के पास विल पावर है, अदरवाइज डेंजरस, धोखा है। तो फिर भगवान यही कहते हैं, वर्तये वच कर्मणि, परंतु फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं, भगवान स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं, कर्म की व्याख्या अल्टीमेटली है क्या, भगवान कहते हैं मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं, कर्म इसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, तो ये कर्म क्या है, कर्म का अर्थ क्या है, कर्म किसको कहते हैं, तो इसके पहले श्लोक में शायद 16-17 में भगवान ने कहा है, लोक संग्रह, कर्म ऐसे करना चाहिए जिसमें लोगों को, समाज को, संसार को कुछ शिक्षा मिले हमारे कर्मों के द्वारा, शिक्षा मतलब पनिशमेंट नहीं, शिक्षा एजुकेशन, हमारे कर्म के द्वारा समाज को, संसार को, परिवार को, किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, हमारे एक्टिविटीज उसको कर्म, कर्तव्य कर्म कहते हैं, जो भगवान करते हैं, आवश्यकता नहीं होने पर भी करते, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी लोग क्या कहते हैं, लोक संग्रह, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, अर्थात हमारे कर्म ऐसे हो जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, समाज को ज्ञान प्राप्त हो, हमारे कर्म ऐसे कदापि न हो जिससे संसार अंधकार में डूब जाए, संसार में अत्याचार बढ़े, संसार में अनर्थ अपराध बढ़े और पूरी सृष्टि इंबैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, इस प्रकार की शिक्षा हम देने लग जाएंगे, अज्ञान फैलाने लग जाएंगे तो समग्र सृष्टि में असंतुलन हो जाएगा, इंबैलेंस हो जाएगा, हो रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों ने भगवान की ओर देखना चाहिए, अर्थात अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को, अपने विल पावर को एक्टिवेट करना चाहिए, अपने विल पावर को जागृत करना चाहिए, आध्यात्मिक विचारों को प्रबल करना चाहिए, भगवान यही कहते, मैं भी वही करता हूं, ऐसे भगवान, भगवान ही कहते, भगवान जो कर्म करते हैं वो एकदम पवित्र होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र है, परम पवित्र है भगवान, भगवान स्वयं कहते हैं आगे चलो, आगे जाके कहते हैं, चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः, भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म बहुत दिव्य है, अब इस श्लोक में भगवान कौन से कर्म करते हैं वो बताया है, कौन से कर्म दिव्य है, लोक संग्रह, जो लोगों को ज्ञान देना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना, लोगों को अज्ञान से दूर रखना, समाज को, संसार को अज्ञान से दूर रखना, भ्रष्टाचार से दूर रखना, अत्याचार से दूर रखना, अपराधों से दूर रखना, अनर्थों से दूर रखना, यह कर्म है भगवान का, और ज्ञान प्रदान करना यह भगवान का कर्म है, और भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे कर्म कैसे हैं, दिव्य है, अर्थात ये कर्म कैसे हो गए, दिव्य कर्म, और यदि हम ये करते हैं भगवान के उपदेशों के अनुसार, तो हमारे कर्म भी कैसे हो जाएंगे? दिव्य कर्म हो जाएंगे। और जब कर्म ही दिव्य हो जाएंगे तो हमारे अंदर पूरी शुद्धता, हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, संपूर्ण शुद्धिकरण हमारा हो जाएगा, शरीर मन और बुद्धि। शरीर निरोगी हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा और बुद्धि सात्विक हो जाएगी। किसको नहीं चाहिए? शरीर निरोगी, मन स्थिर और बुद्धि सात्विक, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। कर्म में जब बिगाड़ हो जाता है, कर्म जब खराब हो जाते हैं, बैड एक्टिविटीज, खराब कर्मों के कारण ये तीनों करप्ट हो जाते हैं। कौन तीनों? शरीर, मन और बुद्धि। शरीर में रोग आ जाता है, मन चंचल हो जाता है और बुद्धि तामसिक हो जाती है। किसके कारण? खराब कर्मों। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे, मैं भी कर्म करता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं भी कर्म करता हूं। परंतु भगवान जो कर्म की व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं, वो कर्म दिव्य कर्म है। और दिव्य कर्म अर्थात सारे समाज में, सारे संसार में ज्ञान का प्रचार करना। ज्ञान का प्रचार कैसे किया जाता है? संसार को अत्याचार, भ्रष्टाचार, मिसबिहेवियर, अनर्थ, अपराध, इनसे दूर रख, इनके इनसे भी दूर रखना है तो क्या करना होगा? उनको ज्ञान देना। सबसे बड़ा कार्य है ज्ञान दान। आज हम इस पाठशाला में बैठे, स्कूल में, लेकिन हम देखते हैं संपूर्ण समाज में यदि ज्ञान दे भी देते, दे भी रहे हैं, कुछ ज्ञान दे भी रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुए? फीस है, फीस। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। परंतु जो भी है, कलयुग का प्रभाव है, दान देकर शिक्षा प्राप्त करना अर्थात वो व्यापार। और इसलिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स एंड ये सब कुछ होते हैं और बाद में सब टेररिस्ट बन जाते हैं या फिर माइंड करप्ट हो जाता है, मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि करप्ट हो जाता है। क्यों? यू बिकम PhD, बहुत अच्छा एजुकेशन, क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पर ये लेते लेते क्या आपने वास्तविक ज्ञान लिया है? रियल नॉलेज। भौतिक ज्ञान प्राप्त करना कदापि पाप नहीं। आप सबसे हाईएस्ट डिग्री लो, आप एकदम भारत रत्न ले लो, इसमें वेरी गुड, प्रशंसनीय है। लेकिन यह प्राप्त करते हुए यदि हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है, निरोगी नहीं है, मन स्थिर नहीं है और बुद्धि सात्विक नहीं है, तो ये इतनी बड़ी डिग्री लेके लाभ क्या? इसलिए वैदिक ज्ञान क्या कहता है, भगवान यहां क्या कह रहे हैं? आप भौतिक ज्ञान जितना चाहे उतना लो, लेकिन इस ज्ञान को लेना कंपलसरी। कौन सा ज्ञान? जो शास्त्रों पे आधारित है, भगवान के उपदेशों के ऊपर आधारित है। इससे क्या होगा? इससे हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो शरीर मन और बुद्धि शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, और ऐसे ही हमारे पवित्र कर्म हमसे होते हैं और भगवान की यही हमारे द्वारा पवित्र कर्म होते रहे, कर्तव्य कर्म होते रहे जो भगवान स्वयं भी करते।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो तो नेक्स्ट टाइम पूछना। चलिए एक प्रश्न पूछे जो नहीं। देखिए भगवान क्या है, भगवान कोई झंझट नहीं करते, झंझट अपन ही करते। प्रॉब्लम ये क्या है, हम लोग सब झंझट करते हैं। भगवान ने हमको बोला, भैया आपको जाना, हमको जाना था, हमको लोग ये मनुष्य बनना था। भगवान बोले ठीक है, आपको फ्री विल दिया है, थोड़ा आपको क्या बनना है? हम बोले हमको मनुष्य बनना है, हम जाएंगे वहां पर थोड़ा मजा मौज करेंगे और फिर आ जाएंगे आपके पास। भगवान बोले ठीक बात है, जाओ थोड़ा मजा करो, थोड़ा आउटिंग पे जाओ, थोड़ा हिल स्टेशन पे जाओ, घूम के आ जाओ। अब हम यहाँ पे आ गए, हमने बोला था हम यहाँ आएंगे, थोड़ा सा मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। अब हम यहाँ आ गए, अभी हम क्या बोल रहे हैं? अरे भगवान ये तो आपसे भी बेस्ट है, आपकी क्या आवश्यकता है? हम भगवान को भूल गए, जिसने ये सब कुछ बनाया है उसको भूल गए। तो झंझट किसने शुरू की? हमने शुरू की। भगवान हमको मुक्त करा रहे थे, हम बोले नहीं नहीं, हमको कहाँ मुक्त होना है, हमको इधर एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हम इस झंझट में फंस गए। भगवान बोल रहे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके इसमें फंस गए, आपको अच्छा लग रहा है रहो, लेकिन मुझे भूलो तो मत कम से कम, समाज को अच्छा तो बनाओ, लोगों को अच्छा तो बनाओ, अच्छे तरीके से तो रहो। आपको यहां रहना है कोई बात नहीं, मुझसे दूर रहना है कोई बात नहीं, लेकिन आपस में स्वयं में अच्छे तो रहो। हम क्या करते हैं, आपस में भी अच्छे नहीं रहते, अपराध हमारे अंदर बहुत बढ़ गया है, अनर्थ हमारे अंदर बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, एक दूसरे की कोई कीमत नहीं है। अर्थात ये क्यों हो रहा है? तो फिर भगवान को आना पड़ता है, अरे भाई तुम्हारी मर्जी से तुम यहां रह रहे हो, तुम्हारे कर्मों से तुम यहां पर रह रहे हो, और ऊपर से ये झगड़े फसाद कर रहे हो, सब अनर्थ कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, फिर उपदेश देने के लिए आते। ये भगवान की कृपा है। तकलीफ हमारी है कि हम ये दिव्य संदेश दिव्य कर्म नहीं करते, हम कर्तव्य कर्म नहीं करते, हम ज्ञान प्राप्त करके समाज को, लोग समाज को, संसार को उस ज्ञान का प्रदान, ज्ञान का प्रसार नहीं करते। वो बहुत आवश्यक।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय।